मेरे युवा मित्रों नमस्कार। एफईआईएस के आज 10 अक्टूबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मोटे तौर पर इस विषय पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहे हैं। दोस्तों, चीन के प्रधानमंत्री, इसकी चर्चा मैंने कल भी की थी, भारत आने वाले हैं। और आपने अगर कल का दूरदर्शन का समाचार देखा हो तो शुरुआत में ही जो चीन के प्रधानमंत्री की जो भारत यात्रा है उसको लेकर के दो एक्सपर्ट की बहुत अच्छी बातचीत दिखाई गई थी, टेलीकास्ट किया गया था। मैं देखिए आप लोगों से लगातार अनुरोध करता रहा हूं कि प्लीज कम से कम दूरदर्शन के जो समाचार होते हैं 8 से 9 तक हिंदी में होते हैं और 9 से 10 तक अंग्रेजी में, आप उसमें से किसी भी एक मीडियम को चुन सकते हैं और ये समाचार आप जरूर देखें। और ऐसे स्टूडेंट स्पेशली मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन वो अंग्रेजी ठीक ठाक करना चाह रहे हैं, कम से कम ताकि जनरल इंग्लिश का पेपर तो क्वालिफाई कर ही ले सिविल सर्विस में, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है कि वो हिंदी की खबर पहले देखें और इसके बाद अंग्रेजी की खबर भी देखें। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका इंग्लिश इंप्रूव होता चला जाएगा और कम से कम जनरल इंग्लिश को क्वालिफाई करने लायक तो ये आपको बना भी देगा और इसी बहाने आपकी न्यूज रिविजन भी हो जाएगा, तो एक बहुत अच्छा अवसर होता है। उसमें बहुत अच्छी बातें सामने आई थी, अब उनके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री की जब यात्रा होगी, जब बातचीत होगी तो उसके जो परिणाम सामने आएंगे, उसकी समीक्षाएं आएंगी, उस समय आपको बहुत सी बातें पढ़ने को मिलेंगी। यहां जो उस न्यूज में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मिला है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, दोस्तों वह है मामल्लापुरम को लेकर। मामल्लापुरम, ये मामल्लापुरम क्या है? इससे पहले आपको मालूम होगा कि भारत और चीन के प्रधानमंत्री की बातचीत जो हुई थी वो वुहान में हुई थी। कभी कभी प्री में इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये वुहान क्या है। चलिए, आपसे जब मामल्लापुरम के बारे में पूछेंगे तो आप बता देंगे, सामान्य तौर पर बता देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी आपको और अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। सामान्य रूप में तो नहीं पूछेंगे कि ये क्या है, आप बता देंगे कि मामल्लापुरम, पुरम के नाम से ही स्पष्ट होता है कि कोई नगर होगा, लेकिन उसके और भी आगे जाकर के कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तमिलनाडु में चेन्नई के निकट है, मंदिरों का शहर इसे कहा जाता है, द सिटी ऑफ टेम्पल्स, और ये बहुत ही प्राचीनतम नगरों में से है। खासकर पल्लव काल, जो हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, पल्लव काल जो खासकर कला संस्कृति के लिए बहुत ही सराहनीय युग माना जाता है, उस दौर में ये जो मामल्लापुरम है ये बहुत समृद्ध बंदरगाह था। और आपको मालूम है कि उस समय बंदरगाहों के जरिए ही व्यापार होता था, जैसा कि मैंने कहा कि चेन्नई के पास यानी कि समुद्र है, वहां तो बंदरगाह होगा। और ये प्रमाण मिले हैं वहां कि 1300 साल पहले से भारत के चीन के साथ संबंध रहे हैं, उससे पहले भी रहे हैं लेकिन जो प्रमाण मिले हैं। और वहां बकायदे उसके पूर्वी तट पर, मामल्लापुरम के पूर्वी तट पर चीन के बने हुए मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसे सेलाडॉन कहा जाता है, और चीन के सिक्के भी मिले हैं, यानी कि चीन और भारत के बीच व्यापारिक संबंध आज से लगभग 1300 साल पुराने रहे हैं। जो पल्लव काल है वो लगभग लगभग इसी समय का है। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। तो अब आप देखिए कि क्या है कि चूंकि जो मामल्लापुरम है अब ये चर्चा में आ गया, तो इतिहास की दृष्टि से अब कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है? पल्लव काल। तो थोड़ा सा पल्लव काल के बारे में जान लीजिए। चीन के बारे में जब कुछ भी पूछा जाता है ऐतिहासिक संबंध में, तो यहां आपको एक तथ्य ज्ञात हो गया कि किस तरह से हमारे व्यापारिक संबंध आज के ही नहीं है बल्कि बहुत पुराने रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए, हो सकता है कि आपके काम आए। मित्रों, आप जानते हैं कि बुधवार को, हर बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है और उस कैबिनेट की मीटिंग में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट निर्णय लिया गया है, मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि जब देश का विभाजन हो रहा था तो जिसे हम अभी पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां से कुछ लोग भारत आए थे भारत आने के बाद वो भारत के दूसरे दूसरे क्षेत्रों में जाकर के रहने लगे। तो अभी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि इन लोगों को 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार 5.5 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा। लगभग 5,300 परिवार 5,300 families इस तरीके के हैं। तो एक सरकार का एक अच्छा कदम है कि उनके लिए सोचा जा रहा है। दोस्तों यूं कह लीजिए कि छोटी घटनाओं का जहां तक सवाल है बस यही दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। आज के मुख्य विषय को दोस्तों मैं आपके सामने एक अलग ही अंदाज में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और मैंने इस विषय को क्यों चुना है पहले मैं यह बता दूं और अंदाज फिर मैं बाद में उस पर आऊंगा। अभी जो सितंबर में जो आपके एग्जाम हुए हैं सिविल सर्विस मेंस के, उसमें आप एसे के पेपर को उठाकर देखिए। एसे का पेपर, निबंध का पेपर, बहुत खूबसूरत पेपर निबंध का है और उसमें कुछ बहुत अच्छे विषयों पर निबंध लिखने को कहा गया है। उसी में जो सेक्शन बी है उसमें एक विषय है, पक्षपात पूर्ण मीडिया भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है, बायस्ड मीडिया इज ए रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। इसको आधार बना करके मैं आज आपसे लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस पर कुछ बात करने जा रहा हूं, लेकिन मैंने इस अपनी बात को थोड़ा सा विस्तृत कर दिया, इसके दायरे को फैला दिया है, और इसके दायरे में मैंने दो चीजें और समेट ली हैं, वो है संसद और न्यायालय। और ऐसा इसलिए कि आज जो आपको करंट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, देखिए उसका शीर्षक है राजनीतिक अखाड़े में न्यायपालिका का क्या काम, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, ये आपको प्रोवाइड किया गया है। जब आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उस आर्टिकल में तीन तथ्य आपको मिलेंगे, तीन तथ्य। एक प्रेस, जिसकी बात अभी हम करने जा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ प्रेस से ही नहीं है, नागरिक से भी है, प्रेस तो उसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह सकते हैं, फिर संसद और तीसरा न्यायालय। तो हम इन चारों को मिला करके, जो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा दायरा इसका बढ़ा रहा हूं, कुछ बातें करेंगे। अब देखिए कि जो निबंध आपसे पूछा गया उसके पीछे रीजन क्या है, तो जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि पिछले लगभग लगभग 1-1.5 साल से, या यूं कह लीजिए कि 2 साल से, इस बात की काफी कुछ चर्चा हो रही थी कि हमारा जो मीडिया है वो बड़ा बायस्ड हो गया है, पक्षपातपूर्ण हो गया है, और पक्षपातपूर्ण इस मायने में कि वो सरकार का बहुत ज्यादा पक्ष ले रहा है। देखिए जब हम मीडिया की बात करते हैं तो दो मीडिया हमारे सामने होते हैं, एक है गवर्नमेंट मीडिया जिसे हम ऑफिशियल मीडिया कहते हैं, दूरदर्शन है, रेडियो है, ये ऑफिशियल मीडिया है। दूसरे वो मीडिया जिन पर पूरी तरह से निजी स्वामित्व है, जो दूसरे चैनल्स आप देखते हैं ये निजी स्वामित्व वाले चैनल्स हैं। तो ये कहा जाने लगा था कि नहीं, ये जो मीडिया है ये सब सरकार के पिछलग्गू हो गए हैं, केवल सरकार की ही बातें करते हैं, और देखिए जो ऑफिशियल मीडिया है तो डेफिनेटली वो सरकार की बातें करेगा ही, और सरकार की बातें करना कोई बुरी बात तो है नहीं, सरकार की जो नीतियां हैं, जो प्रोग्राम है, जो सफलताएं हैं उनको पब्लिक के सामने रख रहा है। अब ये प्राइवेट मीडिया के ऊपर है कि वो किस तरीके से चीजों को रखता है, वो क्या कर रहा है, कितने तटस्थ होकर के वो अपना काम कर पा रहा है। तो लगातार लोग ये मान करके चल रहे थे कि नहीं, ये जो मीडिया है, जो प्राइवेट मीडिया है, अब ये भी तटस्थ नहीं रह गया है, ये इस मीडिया पर बहुत पैसे वाले जो घराने हैं उनका नियंत्रण हो गया है, और चूंकि उनके अपने हित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो सरकार के साथ मिलकर चलना पसंद करते हैं। इसी के साथ ही साथ कुछ इस तरह की भी बातें आप सुन रहे थे कि सरकार भी उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करती है, सरकार उन्हें आदेश देती है, कुछ मीडिया घरानों के साथ जो सब जब सरकार के संबंध थोड़े से तल्ख हुए तो उनके नतीजे उनको भुगतने पड़े, तो जो मीडिया है वो थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा सा हुआ है, इसलिए वो खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहा है। उसको बेस बना करके मुझे लगता है कि ये पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है विषय को चुना गया। अब आइए हम जो विषय मैंने चुना है इसके तात्कालिक कारण पर आए। इसकी चर्चा आपको मालूम है कि मैंने की भी है कि अभी जो 49 जो पर्सनालिटी हैं हमारे देश की, जो बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, जिसमें फिल्म मेकर्स हैं, साहित्यकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, इन लोगों ने प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि हमारे देश में जो ये भीड़ की हिंसा हो रही है इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। तो ये बात उस समय काफी मीडिया में आई थी, उस पर थोड़ा सा विवाद भी हुआ था। बाद में फिर पता लगा कि इस पेपर को एक या जो ये जो पत्र भेजा गया था, इस पत्र को आधार बना करके एक व्यक्ति ने बकायदे कोर्ट में दायर किया कि ये जो मामला है देशद्रोह का मामला है, इसके माध्यम से शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश की जो इमेज है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो न्यायालय ने कह दिया जो एक कि इसके ऊपर बकायदे थाने में जाकर के केस दर्ज कराई जा, और ऐसा कर भी दिया गया। और इसके बाद फिर ये मामला खूब तेजी से विवाद के केंद्र में आया। बाद में ये ठीक है जो भी स्थितियां होंगी, लेकिन अब आप देखिए कि अगर केवल पत्र लिखने पर देशद्रोह के मामले बन सकते हैं तो यहां फिर से आपको एक अभिव्यक्ति पर मंडराने वाला खतरा नजर आ रहा है। देखिए इसके ऊपर अभी सरकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, और ये मुझे लगता है कि ये मामला अपने आप खत्म भी हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसको आधार बनाकर मैं एक दो बातें आपसे खासकर प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूंगा जो आपको मालूम होना चाहिए। पहला तो यह है कि जिस कोर्ट ने इसके लिए कहा है कि इनका बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, वो बिहार के मुजफ्फरपुर का कोर्ट है। ये आपको आपके ध्यान में होना चाहिए क्योंकि प्री में इस तरीके की बातें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ये जो धारा है जिसके तहत ये देशद्रोह का मामला लगाया गया है, अगर आप उसे थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे तो शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। वह है 124A, इससे भी क्या है कि आपको थोड़ा सा अपनी बात को तथ्य के सामने रखने में तथ्य के साथ रखने में आसानी होगी। इसका एग्जैक्ट है आईपीसी सेक्शन 124A, राइट। इसी के साथ जुड़ी हुई एक दो और बातें हैं, मुझे लगता है कि वो भी आपके सामने मुझे रखनी चाहिए। कि देखिए पहले 17वीं शताब्दी के आसपास ये माना जाने लगा था कि जो सरकार है उसका अस्तित्व बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है। तो जनता अगर अच्छा अच्छा सोच रही है तो सरकार बनी रहेगी, और अगर जनता बुरा सोच रही है तो स्वाभाविक है कि सरकार पर आंच आएगी। तो एक एक्ट लाया गया, वो इसी तरह का देशद्रोह का एक्ट था, और ब्रिटेन ने सबसे पहले ये काम किया और 1870 में वो भारत में भी आ गया। और इसी एक्ट के तहत पहली बार बाल गंगाधर तिलक जी को 1897 में देशद्रोह के मामले में जेल में भेजा गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपकी जानकारी में मैं लाना चाह रहा था। दोस्तों चूंकि वक्त बहुत अधिक नहीं है कि मैं इस पर आपसे बहुत विस्तार के साथ बात करूं, जैसा कि मैंने कहा कि जो करंट कंटेंट का आज का आर्टिकल है वह संसद और न्यायालय की जो वर्तमान स्थिति है, जो द्वंद्वात्मक स्थिति है, उसके बारे में काफी कुछ कहता है, उसे आप जरूर देख लेंगे। यहां आपको खासकर दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए अगर मान लीजिए आपको इस पर निबंध लिखना है तो। पहला तो यह कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या परंपरा रही है। आप जैन धर्म में चले जाते हैं तो वहां स्यादवाद है, अनेकांतवाद है कि एक बात कई तरीके से देखी जा सकती है। स्यादवाद जब बहस हो रहा है, तर्क वितर्क हो रहा है तो शायद 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 तुम भी सही हो, शायद मैं भी सही हूं। तो आप देखिए कि हमारे यहां जो शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, जो विचार विमर्श की परंपरा रही है, वो शुरू से बहुत ओपन रही है। और बकायदे जो व्यक्ति पराजित महसूस करता था वो अपनी कमी स्वीकार करता था, सामने वाले की बात को मानता था और कहा जाता है कि वो उसका शिष्य बन जाता था। ये हमारी परंपरा रही है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संस्कृति, समाज और राजनीति का आप कह सकते हैं कि अभिन्न अंग रहा है। फिर अब हम डेमोक्रेसी में हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। तो जो लोग अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं, सीधी सी बात है कि उन्हें अपनी बात कहने की भी पूरी आजादी होनी चाहिए। तो अगर डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है तो मान करके चलिए इनफैक्ट डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, कुछ फैक्ट्स बताए हैं और कुछ सोच विचार करने के लिए कुछ एक यूं कह लीजिए कि कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पर आप विचार करेंगे और बेहतर होगा कि इस पर आप एक निबंध लिखने की कोशिश करें। यह अच्छा अभ्यास आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं नव्या शर्मा, नितेश विश्वकर्मा, संदीप अख्तर, सुधर्म कुमार और संजय साहू। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।